एकत्र ज्ञानगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
एकत्र ज्ञानगोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार।
और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में हाँ थोड़ा अकेडमिक सा लग सकता है, साहित्य सिद्धांत, लिटरेरी थियोरी।
हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं जूलियन वॉल्फ्रिस, रूथ रॉबिन्स और केनेथ वॉमैक की किताब की कॉन्सेप्ट्स इन लिटरेरी थियोरी।
बिल्कुल, पर थियोरी सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमारा मकसद यही है कि दिखाएं कि ये सिद्धांत सिर्फ क्लासरूम की बातें नहीं है।
सही।
ये असल में दुनिया को, कहानियों को और यहाँ तक कि खबरों और विज्ञापनों को समझने के आप कह सकते हैं बड़े काम के औजार हैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिद्धांत सवाल उठाते हैं कि किसी चीज का मतलब आखिर बनता कैसे है ना? क्या लेखक जो सोचता है वही वही आखिरी बात है, या फिर पढ़ने वाला, देखने वाला, वो भी मतलब बनाने में शामिल होता है?
बिल्कुल, और ये सवाल तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा। तो आज कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली दुनिया के कुछ दरवाजे खोलें आसान भाषा में।
हाँ चलिए, तो सबसे पहले इन लेखकों से मिलते हैं, जूलियन वॉल्फ्रिस, रूथ रॉबिन्स और केनेथ वॉमैक। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं और मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं।
हाँ वो तो है। जैसे वॉल्फ्रिस, वो क्रिटिकल थ्योरी और विक्टोरियन लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं, और कहते हैं डेरिडा जैसे मुश्किल विचारकों को भी आसानी से समझा देते हैं।
अच्छा।
और रूथ रॉबिन्स, उनका काम है जेंडर स्टडीज और फेमिनिस्ट थ्योरी पर, मतलब पहचान और शक्ति के सवाल साहित्य में कैसे दिखते हैं।
और केनेथ वॉमैक, उनका दायरा तो और भी मजेदार है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से लेकर पॉप कल्चर तक।
हाँ सुना है वो बीटल्स पर भी एक्सपर्ट है।
हाँ, और यह दिखाता है कि ये थ्योरी से भारी भरकम किताबों पर ही नहीं लगती, बल्कि हमारे आसपास जो कल्चर है उस पर भी लागू होती है।
और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि तीनों अनुभवी शिक्षक हैं। वो जानते हैं कि स्टूडेंट्स को ये सब समझने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है।
तो ये किताब सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं,
नहीं, ये एक गाइड जैसी है जो मुश्किल रास्तों पर हाँ हाथ पकड़ कर ले चलती है। और वो किसी एक थ्योरी के तरफदार नहीं है, एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं।
अच्छा, तो फिर ये किताब करती क्या है, इसका मेन काम क्या है?
देखिए, ये असल में साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए अलग अलग चश्मे देती है, या कह ले लेंस।
लेंस, हाँ।
ये कोई एक ऐसी मास्टर चाबी नहीं है जो हर ताला खोल दे, नहीं, बल्कि ये एक टूल किट है।
टूल किट, सही है।
इसमें ऐसे औजार हैं जिनसे हम किसी कहानी, कविता, फिल्म या विज्ञापन की परतें खोल सकते हैं, उसके छुपे हुए मतलब या उसके अंदर के जो विरोधाभास है उनको देख सकते हैं।
और ये किसी एक थ्योरी को सही और बाकियों को गलत नहीं बताती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ढांचा भी बड़ा अलग है। ये कोई कहानी की तरह शुरू से आखिर तक नहीं चलती। ये जैसे डिक्शनरी होती है ना, या इंसाइक्लोपीडिया, उस तरह की है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे ऑथर या नैरेटिव, उठाकर पढ़ सकते हैं और फिर उससे जुड़े दूसरे विचारों तक पहुंच सकते हैं। एक जाल जैसा बनता है।
अच्छा, इसमें फिर कौन कौन से बड़े आइडियाज कवर होते हैं?
ओहो, बहुत सारे हैं। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मनोविश्लेषण, नारीवाद, मार्क्सवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, लिस्ट लंबी है।
बाप रे।
हाँ, लेकिन डरिए मत, हम आज सब पर बात नहीं करेंगे। हम कुछ सबसे बुनियादी और दिलचस्प विचारों को चुनेंगे और देखेंगे कि वो हमारी समझ को कैसे कैसे बदलते हैं।
ठीक है, किताब का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो यही है, थ्योरी सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, ये दुनिया में मतलब कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है इसे समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। बढ़िया, तो चलिए कुछ मुख्य अवधारणाओं की गहराई में उतरते हैं।
कहाँ से शुरू करें?
मेरे ख्याल से उन शब्दों से शुरू करते हैं जिन्हें हम बहुत आम समझते हैं, लेकिन थ्योरी उन्हें बिल्कुल नए ढंग से देखती है।
जैसे?
ऑथर, लेखक।
हाँ, लेखक।
हम अक्सर सोचते हैं कि लेखक कहानी का भगवान है, उसके दिमाग में एक खास मतलब है जो वो हमें बताना चाहता है।
बिल्कुल, पर 20वीं सदी के एक विचारक हुए रोलान बार्थ, उन्होंने एक आइडिया दिया, द डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की मृत्यु।
लेखक की मृत्यु, इसका मतलब?
नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लेखक सच में मर गया।
अच्छा,
मतलब ये था कि एक बार कहानी या कविता लिख दी गई तो वो लेखक की प्रॉपर्टी नहीं रहती। उसका मतलब पाठक की व्याख्या पर ज्यादा निर्भर करता है।
अच्छा,
जैसे
सोचिए कोई गाना है, उसका मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके दोस्त के लिए कुछ और, हो सकता है सिंगर ने कुछ और ही सोच के लिखा हो।
हाँ, होता है ऐसा। तो बात कहते हैं इससे पाठक का जन्म होता है, मतलब अब मतलब बनाने की ताकत वो पाठक के पास ज्यादा है।
अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है
ना। इसी तरह एक और शब्द है टेक्स्ट,
पाठ।
पाठ मतलब किताब।
हम यही सोचते हैं,
लेकिन थ्योरी कहती है पाठ कुछ भी हो सकता है जिसमें संकेत हो, जिसका विश्लेषण किया जा सके।
कुछ भी,
जैसे एक फिल्म,
एक विज्ञापन,
कपड़ों का स्टाइल, यहाँ तक कि कोई रस्म या रिवाज भी एक पाठ हो सकता है।
अच्छा, मतलब जैसे पढ़ा जा सके, जिसका अर्थ निकाला जा सके।
बिल्कुल, ये आइडिया दिमाग खोल देता है। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास की हर चीज को ज्यादा गहराई से पढ़ सकते हैं, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर सकते हैं।
दिलचस्प, और कौन सा बड़ा आइडिया है?
अब आते हैं एक बड़े विचार पर जिसने भाषा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। और इसमें सबसे बड़ा नाम है फर्डिनेंड डी सॉसर का।
सॉसर, हाँ सुना है नाम।
भाषा विज्ञानी थे। हाँ, उन्होंने कहा कि भाषा असलियत का आईना नहीं है, वो एक सिस्टम है जो हमारी असलियत की समझ को बनाता है।
सिस्टम?
हाँ,
कैसे?
उन्होंने बताया कि हर संकेत, साइन के दो हिस्से होते हैं, संकेतक, सिग्निफायर यानी शब्द या आवाज, जैसे कुर्सी शब्द,
ठीक है,
और संकेतित, सिग्निफाइड यानी वो कॉन्सेप्ट या चीज जो हमारे दिमाग में आती है, चार पैरों वाली बैठने की चीज।
संकेतक और संकेतित, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड।
हाँ, और सबसे क्रांतिकारी बात, सॉसर ने कहा कि शब्द, कुर्सी और चीज, असली कुर्सी के बीच कोई सीधा प्राकृतिक रिश्ता नहीं है।
कोई रिश्ता नहीं है।
हाँ, ये रिश्ता मनमाना है, आर्बिट्ररी है, हमने मान लिया है बस।
अच्छा,
तभी तो अलग अलग भाषाओं में उसी चीज के लिए अलग अलग शब्द है, चेयर, कुर्सी, सिला। अगर रिश्ता प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में एक ही शब्द होता ना।
अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं।
हाँ?
वाह, इसका मतलब भाषा दुनिया को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उसे हमारे लिए बनाती है।
एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा दावा है। और इसी बात को और आगे ले गए उत्तर संरचनावादी विचारक, जैसे जैक्स डेरिडा।
डेरिडा? हाँ, इनका नाम भी काफी सुना है, मुश्किल लगता है।
हाँ, थोड़े हैं। डेरिडा कहते हैं अगर भाषा का रिश्ता सच्चाई से पक्का नहीं है तो फिर किसी भी चीज का पक्का मतलब कैसे हो सकता है।
सही बात है।
यही डेरिडा का वो मुश्किल सा लगने वाला कॉन्सेप्ट आता है, डिकंस्ट्रक्शन या विखंडन।
विखंडन मतलब तोड़ना?
नहीं, तोड़ना फोड़ना नहीं, ये किसी टेक्स्ट, याद है ना, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर छुपे अंतर विरोधों को, उसकी मान्यताओं को और उसमें छिपे पावर गेम्स को उजागर करने का तरीका है।
अच्छा,
डेरिडा कहते हैं कि भाषा हमेशा हमें धोखा देती है, मतलब हमेशा फिसलता रहता है, कभी पकड़ में नहीं आता पूरी तरह।
मतलब हमेशा फिसलता रहता है, दिलचस्प। और फूको, मिशेल फूको का भी जिक्र किया था।
हाँ, फूको एक और बड़े विचारक। उन्होंने डिस्कोर्स यानी विमर्श का आइडिया दिया।
विमर्श मतलब बातचीत।
सिर्फ बातचीत नहीं, किसी विषय के बारे में सोचने, बात करने का पूरा सिस्टम जो ज्ञान और शक्ति, पावर नॉलेज से जुड़ा होता है।
विज्ञान और शक्ति।
हाँ, जैसे पागलपन का विमर्श समय के साथ कैसे बदला है, या अपराध का विमर्श कानून और समाज में कैसे काम करता है। फूको कहते हैं ज्ञान कभी मासूम नहीं होता, वो हमेशा ताकत के खेल से जुड़ा होता है।
ओह, तो ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं, मतलब स्थिर नहीं है, भाषा फिसलन भरी है और ज्ञान शक्ति से जुड़ा है।
बिल्कुल, ये हमें ज्यादा क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक पाठक और दर्शक बनाते हैं।
सही है। अच्छा, अब एक और अहम मोड़ लेते हैं, पहचान, आइडेंटिटी और शक्ति पावर से जुड़े सिद्धांत, ये क्या है?
अंत आते हैं, ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि साहित्य और संस्कृति में अलग अलग समूहों का, खासकर महिलाओं, लैंगिक अल्पसंख्यकों या पूर्व औपनिवेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है और कैसे उनकी पहचान गढ़ी जाती है।
अच्छा,
जैसे नारीवादी आलोचना क्या पूछती है?
वो पूछती है कि कहानियों में महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, क्या उन्हें सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाया जाता है, क्या भाषा खुद पुरुषों के नजरिए से बनी है। ये पितृसत्ता यानी पुरुषों के वर्चस्व वाली व्यवस्था पर सवाल उठाती है।
और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत, आपने एडवर्ड सईद का नाम लिया था।
हाँ, एडवर्ड सईद का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी देशों ने साहित्य और अकादमिक लेखन के जरिए पूरब की एक पिछड़ी, रहस्यमयी और कमतर छवि बनाई।
अच्छा, इसी को सईद ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद कहते हैं। ये छवि उपनिवेशवाद को सही ठहराने में मदद करती थी। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे अन्य, द अदर का निर्माण किया जाता है, यानी किसी समूह को अपने से अलग और कमतर दिखाकर।
ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बनाती हैं और कभी कभी समाज में मौजूद भेदभाव और असमानता को मजबूत करती हैं, तो कभी कभी उसे चुनौती भी देती हैं।
हाँ, यही किताब का वो कोटेशन याद आता है जो आपने बताया था।
हाँ, एक साहित्यिक पाठ कभी भी सौंदर्य परक सुंदरता की निर्दोष वस्तु नहीं होता। यह हमेशा उस संस्कृति का प्रतिभागी होता है जिसने इसे उत्पन्न किया है।
जो अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं, वर्ग, लिंग या नस्ल के बारे में को मजबूत करने और कभी कभी उनकी आलोचना और प्रतिरोध करने के लिए जगह प्रदान करने में सक्षम होता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि पढ़ना कितना अहम और हाँ, कभी कभी राजनीतिक काम हो सकता है।
बिल्कुल। तो अदनमन, सारी बातों से कुछ मुख्य संदेश या थीम निकालना चाहें तो पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक तो यही है, अर्थ की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। कोई एक पत्थर की लकीर वाला मतलब नहीं होता।
सही।
मतलब हमेशा बातचीत में, संदर्भ में और पढ़ने वाले की नज़र में बनता बिगड़ता कहता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज का मतलब कैसे गलत समझ लिया जाता है।
हाँ बिल्कुल। और दूसरा संदेश?
दूसरा है भाषा की ताकत और उसका धोखा, पावर एंड डिसेप्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज। भाषा सिर्फ विचारों को बताती नहीं, उन्हें आकार देती है, वो दुनिया को रचती है। लेकिन ये फिसलन भरी भी है। नेता, विज्ञापन बनाने वाले सब जानते हैं भाषा का इस्तेमाल कैसे लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। हमें इसके प्रति सचेत रहना होगा।
बहुत जरूरी बात। और तीसरा?
तीसरा, सब कुछ राजनीतिक है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, खासकर साहित्य और संस्कृति। कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं, कौन सी नहीं, किरदारों को कैसे दिखाया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं शक्ति संबंधों से जुड़ा है। महान किताबों की लिस्ट भी समाज के मूल्यों और ताकतवर लोगों की पसंद को दर्शाती है।
सही कहा। जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई पुरानी कहानी पढ़ते हैं तो ये पूछना जरूरी है कि ये किसके नजरिए से कही जा रही है, है ना?
बिल्कुल। और चौथा?
चौथा ये कि सिद्धांत असल में देखने के अलग अलग चश्मे हैं, थ्योरी एज लेंसेज।
हाँ, चश्मे वाली बात।
कोई एक थ्योरी हर चीज का जवाब नहीं दे सकती। नारीवादी चश्मा लिंग भेद दिखाएगा, मार्क्सवादी चश्मा वर्ग संघर्ष, उत्तर औपनिवेशिक चश्मा नस्ल और उपनिवेशवाद के मुद्दे। ये किताब हमें इन अलग अलग चश्मों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि हम किसी भी चीज को ज्यादा ज्यादा पूरी तरह से देख सकें।
ये बात उस पहले कोटेशन की याद दिलाती है।
हाँ बिल्कुल। साहित्य सिद्धांत कोई मास्टर चाबी नहीं है, बल्कि यह एक विविध टूल किट है जो हमें विभिन्न प्रश्न पूछने में मदद करता है। सवाल पूछना शायद जवाब पाने से ज्यादा जरूरी है।
सवाल पूछना, बहुत खूब। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि इन भारी भरकम लगने वाले विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला फायदा तो है बेहतर मीडिया साक्षरता, बेटर मीडिया लिटरेसी।
वो कैसे?
आज हम सूचनाओं और कहानियों के समंदर में जी रहे हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, फिल्में, विज्ञापन। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि इन संदेशों को सिर्फ ऊपरी तौर पर ना लें, बल्कि उनके पीछे छुपे इरादों, मान्यताओं और भाषा के खेल को समझें। जैसे कोई विज्ञापन देखकर हम पूछ सकते हैं, ये क्या बेच रहा है और कैसे बेच रहा है, ये किस तरह की जीवन शैली को आदर्श बता रहा है।
हाँ, ये तो बहुत काम की बात है। और
दूसरा, ये हमारी आलोचनात्मक सोच को तेज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम किसी की दलील सुनते हैं, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग में हो या दोस्तों की बहस में,
हाँ,
हम उसके पीछे की मान्यताओं को पहचानना सीखते हैं। हम भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान देना सीखते हैं। ये हमें आसानी से बहकावे में आने से बचाता है।
बिल्कुल। तीसरा फायदा?
तीसरा, ये हमें समाज में शक्ति कैसे काम करती है इसकी गहरी समझ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर डायनामिक्स। फूको का विमर्श या ग्रामशी का आधिपत्य, हेजेमनी, यानी कैसे कुछ विचार कॉमन सेंस बन जाते हैं, ये हमें राजनीति, ऑफिस कल्चर, यहाँ तक कि परिवार में भी शक्ति के खेल को पहचानने में मदद करते हैं।
अच्छा, और कोई?
हाँ, एक और बात, ये हमें खुद को और दूसरों को समझने में भी मदद कर सकते हैं। सेल्फ एंड अदर अंडरस्टैंडिंग।
वो कैसे?
जैसे पहचान कैसे बनती है, क्या वो स्थिर है या बदलती रहती है। उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अनजाने में दूसरों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं बना लेते हैं, अन्य का निर्माण। ये हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और खुले विचारों वाला बना सकते हैं।
वाह, तो देखा, ये सिद्धांत सिर्फ अकेडमिक नहीं बल्कि जिंदगी को समझने के प्रैक्टिकल टूल है।
बिल्कुल।
अच्छा, इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या आश्चर्य क्या रहा?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि जिसे हम सहज या प्राकृतिक मानते हैं, चाहे वो भाषा का मतलब हो या हमारी पहचान या समाज के नियम, वो कितना ज्यादा रचा हुआ है, बनाया हुआ है और अस्थिर है।
हाँ, ये थोड़ा बेचैन करने वाला भी है, लेकिन आंखें खोलने वाला भी।
हाँ, ये बात तो है।
और आपके लिए सबसे मजेदार बात?
सबसे मजेदार बात ये है कि ये सिद्धांत हमें एक तरह की बौद्धिक स्वतंत्रता देते हैं।
स्वतंत्रता?
हाँ, हम किसी भी टेक्स्ट, चाहे वो किताब हो, फिल्म हो या कोई सामाजिक घटना, को सिर्फ एक नजरिए से देखने के लिए मजबूर नहीं है। हम अलग अलग लेंस लगाकर उसकी नई नई परतें खोल सकते हैं। ये विश्लेषण का काम एक जासूसी जैसा रोमांचक बन जाता है।
जासूसी जैसा रोमांचक, ये बढ़िया का।
हाँ। अच्छा, एक अंतिम विचार जो ये चर्चा हमारे मन में छोड़ जाती है। अगर हर पाठ, हर कहानी, यहाँ तक कि हमारी पहचान भी भाषा और संस्कृति द्वारा निर्मित है, तो क्या वास्तविकता जैसी कोई चीज बची है या सब कुछ सिर्फ व्याख्या का खेल है?
ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल छोड़ दिया आपने। इस पर तो सोचना पड़ेगा।
हाँ, इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।